नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति प्रताप सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज जी, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा को 20 जून से इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट के लिए टीम में शामिल किया गया। भारत के जूनियर कंपाउंड तीरंदाजों ने कल एशिया कप लेग 2 में पुरुष और महिला दोनों व्यक्तिगत स्पर्धाओं के फाइनल में प्रवेश किया। FIH महिला प्रो लीग में भारतीय महिला टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से जारी और भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम 21 जून से होने वाले 4 देशों के टूर्नामेंट के लिए जर्मनी रवाना हुई। भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा को 20 जून से इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। राणा ने इससे पहले इंडिया ए टीम का हिस्सा थे। उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम में जगह नहीं मिली थी और मैच से पहले आज भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान ऋषभ पंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने साफ कर दिया कि विराट कोहली की जगह अब कप्तान शुभमन गिल 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे, वहीं पंत 5वें नंबर पर खेलते नजर आएंगे। देखने वाली बात यह होगी कि तीसरे स्थान पर भारत के लिए बल्लेबाजी की कमान कौन संभालता है। तो मनोज जी, यहीं से शुरू करते हैं। चौथे नंबर पर सबकी नजरें थी और खासकर नजरें थी कि शुभमन गिल कहाँ खेलेंगे, वो तो काफी हद तक सामने आ गया, लेकिन तीसरे नंबर पर
देखिए, तीसरे नंबर पे जो है उन्होंने कहा है कि 3 विकल्प हैं हमारे पास, एक अभिमन्यु ईश्वरन है, करुण नायर हैं और साई सुदर्शन हैं। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इनमें से कौन खेलने जा रहा है और इनमें से किसकी जगह टीम में पक्की है, लेकिन तीनों में से कोई एक खिलाड़ी खेलेगा और उसके अलावा यशस्वी जायसवाल और KL राहुल पारी की शुरुआत करेंगे। और नंबर 4 इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जहां सचिन तेंदुलकर लंबे समय से जो है नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते आए, फिर उसके बाद विराट कोहली ने ये कमान संभाली। यानी जो भारत का टॉप प्लेयर होता है वो नंबर 4 पर खेलता है, जैसे आप देखते हैं ना एथलेटिक्स में या स्विमिंग में आमतौर पर जो नंबर 4 की जो लेन मिलती है वो सबसे ज्यादा जो क्वालिफाइंग में अंक बटोरता है या टाइमिंग अच्छे होते हैं जिसके, उसको वो जगह मिलती है। तो वही कुछ अब नंबर 4 पर सारे रहस्यों से, इफ एंड बट से पूरी तरह से पर्दा हट गया है। शुभमन गिल ही पारी नंबर 4 पर आएंगे और पारी की शुरुआत यशस्वी और KL राहुल करेंगे।
जी बिल्कुल। और इसी के बीच टेस्ट क्रिकेट को लेकर के एक चर्चा और सामने आई, जहां पर लगातार मीडिया रिपोर्ट में ऐसी बात की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC 2027-29 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के चक्र में छोटे देशों के लिए 4 दिवसीय टेस्ट को मंजूरी देने की तैयारी कर रहा है। एक जानकारी में एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र की रिपोर्ट के हवाले से सामने आया। हालांकि भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड अभी भी पारंपरिक 5 दिवसीय मैच खेलते ही नजर आएंगे। इस चर्चा को लेकर लगातार अटकलें थी और किस तरह की चर्चाएं हम लोग के सामने आ रही हैं?
देखिए, 2027 से 2029 के बीच में ये बिल्कुल करीब करीब तय है क्योंकि अभी जो WTC का फाइनल हुआ और उसमें लॉर्ड्स में जय शाह साहब जो ICC के अध्यक्ष हैं उन्होंने जो कुछ रखी अपनी बात, 4 दिन की बात रखी और वैसे भी वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जाने जाते हैं। ICC की जो मार्केटिंग कमेटी है उसमें भी वो रह चुके हैं, बतौर अध्यक्ष काम किया है उन्होंने, BCCI की मार्केटिंग कमेटी में भी वो रहे। तो एक तो आप उसके जरिए ज्यादा मैचेस आपको मिलेंगे, एक विसंगतियां वो खत्म होगी कि एक कुछ टीमें जो है 2 मैचों की सीरीज खेलती हैं, कुछ टीमें 5-5 मैचों की सीरीज खेलती हैं, वो अंतर जो है कम हो जाएगा। और अगर आप देखें तो 72% रिजल्ट जो है चौथे दिन ही आ रहे हैं मौजूदा साइकिल में भी। अगर आप देखें तो अगर आप 2013 से 2019 में देखेंगे तो 324 ओवर का तकरीबन एक मैच में ऑन एन एवरेज गेंदबाजी की जाती है, जो अब घटकर 273 ओवर रह गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टेस्ट मैच है जल्दी खत्म हो रहे हैं, 3 दिन में या 4 दिन में खत्म हो रहे हैं। बस यह है कि जो 5 दिन के टिकट लेते हैं उनको 3 दिन में ही जो है सब्र करना पड़ता है।
जी बिल्कुल, हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से प्रयोग हो रहे हैं टेस्ट मैच के साथ, क्या है वो पिंक बॉल टेस्ट मैच हो, डे नाइट की बात हो, ये भी कहा जा रहा है, ऐसी भी चर्चाएं हैं कि जो 90 ओवर का खेल है उसको बढ़ा के 98 ओवर तक ले जाया जाएगा। तो हालांकि खेल की अवधि में शायद बहुत अधिक बदलाव नहीं होगा, एक दिन
मैं समझता हूँ स्वागत योग्य फैसला है। और जो रिवाइज मॉडल है उसमें 3 टेस्ट सीरीज जो है उसमें 3 हफ्ते के अंदर खत्म करने का प्रावधान रखा गया है। तो अगर 98 ओवर होते हैं तो मैं समझता हूँ कि खेल का भी कोई नुकसान नहीं होगा और 4 दिन में जो ऑफिशियली मैच खत्म होगा। आज 5वां दिन जो है टेस्ट मैच में अगर आप देखेंगे तो बारिश की वजह से ही 5वें दिन की नौबत आती है, नहीं तो मुश्किल से 5% से भी कम ऐसे मैच हैं जो 5वें दिन चलते हैं।
जी बिल्कुल। और अब बात करते हैं महिला T20 विश्व कप की, जो अगले महीने से शुरू होने जा रहा है, इसी महीने से। और भारतीय टीम को अपना ग्रुप अलॉट हो गया है। भारत को ग्रुप ए में रखा गया, जिसमें भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका की टीमें शामिल होंगी। भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। भारतीय टीम को आखिरकार इस विश्व कप के लिए अपना ग्रुप मिल गया है, और यहाँ पर भी भारत का चित प्रतिद्वंदी पाकिस्तान है।
पाकिस्तान की महिला टीम की बात करें तो उतना कंपटीशन भारत को कभी नहीं मिला, जिस तरह से पुरुषों में भी अगर आप वर्ल्ड कप देखेंगे तो भारत को कंपटीशन ज़्यादा मिला नहीं है। हम लगातार सारे मैच जीतते रहे हैं ओडीआई वर्ल्ड कप में, लेकिन महिलाओं में जितने मैचेस अब तक हुए हैं सभी में भारत जीता है और कभी पाकिस्तान से हारा नहीं है। पाकिस्तान में वाकई जो महिला क्रिकेट है बिल्कुल शैशव अवस्था में है, कोई ज़्यादा सुधार हुआ नहीं, लेकिन भारत में लगातार प्रयोग हो रहे हैं और लगातार खिलाड़ी आ रही हैं। और अगर एक कई ऐसे टूर्नामेंट भी होते हैं जिसमें आप कई युवा खिलाड़ियों को आजमाते हैं और वो आपके आगे के कॉम्पिटिशन में काम आता है।
देश के जूनियर कंपाउंड तीरंदाजों ने कल सिंगापुर में एशियाई कप लेग टू में अपने शानदार प्रदर्शन के बल पर पुरुष और महिलाओं दोनों व्यक्तिगत स्पर्धाओं के फाइनल में प्रवेश कर लिया। पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारतीय तीरंदाज कुशल दलाल ने बांग्लादेश के हिमू बछार को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। वहीं एक अन्य सेमीफाइनल में भारत के सचिन चेची ऑस्ट्रेलिया के जोशुमा मोचान से हार गए। अब वो कांस्य पदक के लिए बांग्लादेश के हिमू बछार से मुकाबला करेंगे। वहीं व्यक्तिगत महिला कंपाउंड वर्ग में भारत का स्वर्ण और रजत पदक लगभग पक्का हो गया। फाइनल में भारत की शानमुखी नागा साई बुड्डे का सामना हमवतन तेजल सालवे से होगा। कल के मुकाबले में जो प्रदर्शन देखने को मिला कुशल दलाल का, रिकॉर्ड अंक और शानदार प्रदर्शन, क्या कहना चाहेंगे?
जी, बहुत संघर्षपूर्ण मुकाबला था बांग्लादेश के उनके प्रतिद्वंदी के साथ सेमीफाइनल में। और ये जूनियर कंपाउंड आर्चरी की स्पर्धा है, क्योंकि जब से उन्होंने एशिया कप का लेग वन जो जीता है, खिताब जीता है, उसके बाद से उनके हौसले बिल्कुल सातवें आसमान पर है। और महिलाओं में देखें, जैसे कि आपने नागा का जिक्र किया, आपने तेजल का जिक्र किया, दोनों भारतीय हैं, मतलब आप देखिए दोनों इंडियंस के बीच में फाइनल मुकाबला हो रहा है। एक टॉप सीड है, एक सेकंड सीड है, 18 साल की नागा, और अगर तीसरी खिलाड़ी अगर टीम की हम उसको शामिल कर लें तनिष्का ठोकल को, तो इन तीनों ने मिलकर क्वालिफिकेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और कुशल और शनमुख की मिक्स डबल्स जो जोड़ी है उसने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो कई विश्व कीर्तिमान भारतीय खिलाड़ियों के नाम रहे हैं।
अब बात करते हैं हॉकी की। हॉकी में FIH महिला प्रो लीग में भारतीय महिला टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी है। आज का मुकाबला यदि बात की जाए, भारत कल अर्जेंटीना से 1-4 से हारा है। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया से भी भारत को हार का सामना करना पड़ा। लगातार भारतीय महिला हॉकी में प्रयोग हो रहे हैं बीते एक साल में, किस तरह से देखते हैं टीम की जो वर्तमान लय है?
देखिए, तीन मैच हम जो है लगातार हारे हैं, अब चौथा मैच हम ना हारें, इसके लिए ज़रूरी है, जैसे कि आपने सवाल अपना आप बड़ा वाजिब सवाल है कि लगातार तीसरी हार को कैसे टाला जाए, क्योंकि सलीमा टेटे टीम की कप्तान है। क्वार्टर वन में जिस तरह से दुविधा में उन्होंने थी कि क्रॉस करें या गेंद को सीधा गोल पर हिट करें, वो बिल्कुल निश्चित गोल होना चाहिए था। इसी तरह से पेनल्टी कॉर्नर पर अगर आप देखें तो रशर और गोलकीपर को बीट कर देती हैं हमारी खिलाड़ी, लेकिन उसमें पावर की कमी होती है, जो शॉट्स में जो पावर लगाए जाते हैं पेनल्टी कॉर्नर में, उसकी कमी है कहीं ना कहीं, और वो दीपिका के लिए और भारतीय टीम के लिए काफ़ी महंगी भी साबित हुई। अब कोच हरिंद्र पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि भारत के स्टाइल को, जो मसाला हॉकी का नाम वो दे रहे हैं, उसको निर्णायक अंजाम तक पहुँचाएँ।
जी बिल्कुल, कल कोच हरेंद्र सिंह काफ़ी नाराज भी नजर आए, जिस तरह का तालमेल भारत का चौथे क्वार्टर में देखने को मिला। भारत लगातार निर्णायक मुकाबले में बराबरी पर था एक एक की, लेकिन आखिरी के दोनों क्वार्टर भारत के लिए काफ़ी खराब रहे। भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम 21 से 25 जून तक होने वाले 4 देशों के टूर्नामेंट के लिए जर्मनी रवाना हो गई है। ये प्रतियोगिता आने वाले समय में होने वाले विश्व कप की तैयारियों का एक अहम हिस्सा है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
भारतीय टीम अराइजीत सिंह हुंडल के नेतृत्व में आज सुबह बेंगलुरु से जर्मनी के लिए रवाना हो गई। टीम की उपकप्तानी आमिर अली के हाथ में होगी। भारतीय टीम 21 जून को मेजबान जर्मनी के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेगी। टीम इसके बाद 22 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी। भारतीय टीम राउंड रोबिन चरण में अपना अंतिम मैच स्पेन के साथ खेलेगी। ये सभी मैच जर्मनी के बर्लिन में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का समापन 25 जून को क्लासिफिकेशन मुकाबलों के साथ होगा, जिसमें शीर्ष दो टीम खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी, जबकि बाकी दो टीम तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ में खेलेंगी। जर्मनी रवाना होने से पहले कप्तान हुंडल ने 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरई में होने वाले विश्व कप से पहले इस टूर्नामेंट के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि FIH जूनियर विश्व कप 2025 से पहले ये टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कप्तान ने कहा कि हम कुछ बेहतरीन हॉकी टीमों का सामना करेंगे जिसमें हमें अपनी ताकत परखने और अलग अलग रणनीतियां आजमाने का मौका मिलेगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी प्रासंगिकता यही है कि विश्व कप से पहले भारतीय खिलाड़ियों को विदेशी पिचों पर, विदेशी मैदान पे खेलने का इससे बड़ा अवसर नहीं मिलने जा रहा है।
जी हाँ, बिल्कुल, जैसा हुंडल साहब ने कहा भी है, जो टीम के कप्तान है, जो कि सीनियर टीम की तरफ से भी खेल चुके हैं, और क्योंकि आप देखिए अच्छी आला दर्जे की जो टीमें हैं उनसे हमारा पाला पड़ने वाला है। जर्मनी दुनिया की नंबर एक टीम है, भारत नंबर दो टीम है जूनियर्स में, ऑस्ट्रेलिया की रैंकिंग थोड़ी सी गिरी है लेकिन स्पेन चौथे नंबर पर है, तो यहाँ एक तो प्रतिस्पर्धा अच्छी मिलेगी और जूनियर लेवल पर जो है भारत का प्रदर्शन, कई ऐसे खिलाड़ी मिले हैं जिन्होंने सीनियर लेवल पर भारत का लंबे समय तक मार्गदर्शन किया, जिसमें हरमनप्रीत हैं जिन्होंने जो है 2016 का जब जूनियर वर्ल्ड कप भारत ने जीता था तो उसमें 3 गोल किए थे, मनदीप जो आज खेल रहे हैं फॉरवर्ड खिलाड़ी उन्होंने भी 3 गोल किए थे, गुरजंत, वरुण कुमार, सिमरनजीत, ये सब के सब वर्ल्ड कप विनिंग टीम के सदस्य थे जूनियर टीम के। तो अब ये जूनियर टीम से जो इस तरह से खिलाड़ी निकल रहे हैं तो उम्मीद करनी चाहिए कि 2016 में भारत का जो प्रदर्शन था, भारत टॉप रहा था, चैंपियन बना था, 2001 में चैंपियन बना था, उसी कामयाबी को ये लोग दोहराएंगे, लेकिन उससे पहले ये सीरीज बहुत अहम होने वाली है और यहाँ खिलाड़ियों की आजमाइश का ये बहुत ही सुनहरा मौका होगा।
जी बिल्कुल, एक नर्सरी के रूप में देखा जाता है इस टूर्नामेंट को और स्वाभाविक है कि बीते कुछ समय से इस तरह के टूर्नामेंट से जो भारतीय खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं और वो वैश्विक पटल पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब बात करते हैं शतरंज की। मुंबई इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत करते हुए 13 वर्षीय स्थानीय खिलाड़ी हृदय मानियान ने पहले दौर में स्लोवो ग्रैंड मास्टर मानिक मिकुलस को बराबरी पर रोक दिया। लगभग 500 अंक की रेटिंग के अंदर के बावजूद हृदय ने शांत और सटीक तरीके से खेल दिखाया और अपने प्रारंभिक करियर का सबसे बड़ा परिणाम हासिल किया। वहीं आज जॉर्जिया के शीर्ष वरीयता प्राप्त ग्रैंड मास्टर लेवलान पेंटसोलिया ने टूर्नामेंट के दूसरे दौर में भावना कोला को हरा दिया। पेंटसोलिया ने सिर्फ 33 चाल में कोला को शिकस्त देकर अपना दबदबा बनाया। और अब बात करते हैं योग की। 21 जून को आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश विदेश में अनेकों आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय योग महाकुंभ शुरू हुआ। इस कार्यक्रम को कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। वहीं बिहार में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को सभी सरकारी स्कूलों में योग संगम के रूप में मनाया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने जिला के सभी अधिकारियों को, शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर स्कूलों को खुलवाने का निर्देश दिया है। वहाँ पे गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं इस समय। और वहीं देश के इतर नेपाल के काठमांडू में भी भारतीय दूतावास, पोखरा मेट्रो सिटी और पोखरा पर्यटन परिषद के सहयोग से 21 जून को पोखरा में योग दिवस मनाएगा। बहुत कम समय में समझना चाहेंगे कि योग को लेकर के लगातार सरकार जो है बड़े स्तर पर कार्यक्रम कर रही है और अब इसकी झलक वैश्विक स्तर पर दुनिया के हर देश में देखने को मिलती है और भारत में पूरा बुनियादी ढांचा तैयार हुआ है योग को लेकर के। और किस तरह के ये आयोजन हमारे खिलाड़ियों के लिए एक सकारात्मक पहल है?
देखिए, बिल्कुल, कहते हैं ना जान है जहान है, बिल्कुल इस बात को सरकार ने भी माना है और खिलाड़ी भी इसको, योग को अपना रहे हैं और अलग अलग पोजीशंस। अब जैसे हॉकी की बात करें, अभी थोड़ी देर पहले आप हॉकी का जिक्र कर रहे थे, फुटबॉल का जिक्र करें आप, तो गोलकीपर के लिए कुछ एक ऐसी योगिक क्रियाएं हैं जो उनके लिए बहुत उपयोगी रहती हैं, दाएं और बाएं जिस तरह से वो डाइव लगाते हैं, जो जिस तरह से ड्रिबल किया जाता है वो एक अलग तरह की कलाकारी है। मैं समझता हूँ कि योग खेल के हर विभाग में बहुत उपयोगी है और जब से योग के कॉम्पिटिशन्स होने लगे हैं इससे जुड़ी हुई नौकरियां मिलने लगी हैं, रोजगार मिलने लगा है, तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती कोई।
जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। और खिलाड़ियों के लिए अपने मानसिक विकास के लिए और खेल में लगातार अपने धैर्य और संतुलन को बनाए रखने के लिए भी योग एक निर्णायक भूमिका निभाता है और देखा जा रहा है कि विद्यालय स्तर पर, स्कूलों के स्तर पर लगातार इसको खेलों के स्तर पर शामिल किया जा रहा है। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।